विष्णुशिवं ब्रह्मा बाबाभि मङ्गलकारी दिव्यकहानी दिव्यकहानी
ओम शांति। सबसे पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ, जब बाबा अवक्त हुए थे और बाबा की बॉडी इसी हाल में थी, तो दीदी यूपी के टूर में थी, मनमोनी दीदी या ना मनमोनी दीदी, ये यूपी के टूर पे थी। वैसे बाबा के साथ ही मधुबन में रहती थी और दादी बॉम्बे में रहती थी, और दादी यहाँ पर आई थी और दीदी यूपी के टूर पे थी। तो जब बाबा अवेक्ट हुए तो दादी का फोन आया कि दीदी जहाँ भी हो मधुबन पहुँच जाए। तो दीदी के कारण हमको रात को मालूम पड़ गया था कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं, और दीदी जहाँ थी वहाँ फोन नहीं था इलाहाबाद में उस समय, अभी तो सब जगह है, उस समय नहीं था। फिर बनारस फोन किया, फिर बनारस से फिर दीदी को एक भाई ने सूचना दी कि बाबा अव्यक्त हो गए, आप फौरन मधुबन पहुँच जाए। तो फिर दीदी मधुबन में आई और हमारे साथ जो दादी रहती थी और जो जिनके घर में सेंटर था वो माता जी, दोनों यहाँ मधुबन में आए और मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। तो मुझे तो ऐसा अनुभव होता था कि बस अब मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं है, जो अपना था वही चला गया, अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं कैसे चलूंगी, मेरे दिल का हाल कौन लेगा। ऐसे सोच करके मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो जैसे ही मैं रो रही थी ऐसे बाबा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, जैसे बाबा पीछे खड़ा है ना, बिल्कुल ऐसे ही बाबा पीछे हाथ खड़ा करके तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो मैंने बाबा ने कहा, बच्ची तुम रो क्यों रही हो, देखो मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ, देखो तुम्हारे सामने तो हूँ मैं, जब तुम्हारी भक्ति में भी आस पूरी करता था तुझे दिखाई थोड़ी पड़ता था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो मैंने कहा, बाबा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मधुबन में रहूंगी, मैंने बाबा को बोल दिया। फिर उसके बाद फिर दीदी अप्रैल में आई हमारे पास में, दीदी मनमोनी दीदी मतलब तब तो यहाँ आ गई जनवरी में, और फिर उसके बाद अप्रैल में हमारे पास आई वहाँ कानपुर में, हम कानपुर में रहती थी उस समय। तो दीदी ने मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी हमारी बहुत दिल है मधुबन आने के लिए, पहले भी नहीं आई हूँ, बाबा के होते भी नहीं आई हूँ, मेरी बहुत दिल है। तो फिर उन्होंने हमारे साथ जो दादी रहती थी उनको बोला कि अभी इसको भेजना, उन्होंने कहा ठीक है। फिर दीदी के मुख से निकला, अगर हम इसको रख ले तो, उन्होंने कहा रख लेना। तो देखो बाबा ने दीदी के द्वारा खिलवाया, दीदी को निमित्त बना कर गए, बाबा ने कहा अगर हम इसको रख ले तो उन्होंने कहा रख लेना। तो देखो सब यहाँ आए मधुबन में और बाबा मेरे पास आया मिलने के लिए, कैसे बाबा दिल लेता है। मैंने कहा मेरे दिल का हाल कौन लेगा हैं? तो देखो बाबा मेरे पास आया, वहाँ सब यहाँ आए बाबा के पास में मधुबन में, और मेरे पास बाबा वहाँ आया। तो मेरे को आया कि देखो बाबा कितना हमारा दिल लेता है, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा हमारे पास आएगा है। फिर तो हम मई में यहाँ आए, म्यूजियम का उद्घाटन था उस समय, तो मई में मैं यहाँ आई। फिर भट्टियाँ चल रही थी उस समय, जब बाबा अवक्त हुए ना उसके बाद भट्टियाँ चालू हो गई। फिर मेरे को वहाँ यहाँ से देहरादून भेज दिया, क्योंकि उनको यहाँ आना था, मेरे को वहाँ भेज दिया। फिर जब मेरा भट्टी का टर्न आया तो मैं यहाँ आई मधुबन में, तो फिर मेरी भट्टी पूरी हुई। तो फिर दीदी ने मेरे से पूछा, फूला तुम्हारा क्या विचार है, मैंने कहा दीदी जहाँ भी हमारी उन्नति समझो, जहाँ हमारा कल्याण समझो, वहाँ हमको भेज दो, बाकी दिल से पूछते हैं तो दिल तो मेरी यहाँ रहने की है, बाकी जैसे आप चाहे वैसे करो, बड़ों के ऊपर है। फिर दीदी ने मेरा हाथ पकड़ करके टोली की ड्यूटी पर ले वहाँ ले गई, कोठरी पर ले गई, कहा तेरे को टोली संभालनी है यहाँ। तो फिर मेरे को बोला कि तेरे से कोई टोली लेने आएगा ना तो तुम किसी को कुछ बोलना नहीं, तुम मेरे पास आना, मैं तुमको सब बताऊंगी, किसको क्या देना है, नहीं देना है, क्या करना है, वो सब मैं तेरे को बताऊंगी। और क्लास की टोली भी दीदी से पूछनी पड़ती थी, दीदी के पास जाना पड़ता था, तो क्लास की टोली भी क्या खिलानी है। तो ऐसे जैसे दीदी मेरे को बोलती थी वैसे मैं करती थी, और क्लास की टोली के लिए भी दीदी से पूछने जाती थी। तो दीदी का संकल्प मेरा संकल्प एक होता था, मैं यहाँ से सोच के जाती थी क्लास में ये टोली खिलानी है, फिर दीदी से जाके पूछती थी दीदी आज क्या टोली खिलानी है, तो दीदी वही बोलती थी जो मैं संकल्प करके जाती थी। क्योंकि दीदी का भी बाबा से बहुत प्यार था, मेरा भी जिगरी प्यार था बाबा से, तो फिर मेरे को वही बोल, तो दीदी से मेरा बहुत संकल्प मिलता जुलता था। तो ऐसे 69 में ही मैं मधुबन में आ गई, मेरी एक भी 18 जनवरी जो है वो मिस नहीं हुई है, 18 जनवरी में मधुबन में ही करती हूँ। और जब बाबा आ गए तो जब दूसरे साल में बाबा को भोग लग रहा था 18 जनवरी का, तो एक बुलबुल थी, तो बाबा बुलबुल को रोज झोपड़ी में टोली खिलाता था, तो वो जब भोग लग रहा था तो वो यहाँ आई, वो सबके पास जाती थी, एक एक के पास जाती थी सबसे मिलने के लिए, सबके पास जाती थी भाइयों की तरफ, बहनों, इसी छोटे हाल में, इसी छोटे हाल में भोग लग रहा था, तब था यही मेडिटेशन हाल भी बाद में बना है, तो सबसे मिलकर के फिर वो आगे बैठी। फिर दीदी को मालूम था कि ये टोली खाती है, फिर दीदी ने उसको टोली दी, लेकिन टोली नहीं खाई उसने, उस दिन टोली नहीं खाई, जो बाबा को भोग लगा ना वो उसको दिया, वो खाया लेकिन टोली नहीं खाई, फिर उसके बाद वो बुलबुल आई भी नहीं। तो देखो देखो हम बच्चों को तो प्यार है बाबा से, लेकिन उस बुलबुल को भी इतना प्यार है कि देखो आज हमको बाबा के हाथ वो टोली नहीं खानी है, लेकिन बाबा का जो भोग लगा हुआ वो मुझे खाना है, कितना प्यार है उसको भी है? तो इसी तरह से बाबा के पल पल याद आती है। और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ ही रहने लगी, और जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय मेरे शरीर का जन्म हुआ, हमारी हिस्ट्री जो है ना वो यज्ञ से बहुत मिलती जुलती है। तो मैं उतने साल की हूँ जब से यज्ञ की स्थापना हुई मेरा शरीर का जन्म हुआ, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो इस सब बाबा के साथ जो आए वो सब स्टीमर से आए थे, और हम लोग एरोप्लेन से आए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, उस समय मैं 10 साल की थी। तो हम लोग भी पाकिस्तान से सब कुछ जेवर ले, मतलब पैसा वगैरह सब कुछ, मतलब कीमती चीज सब लेके आए थे, क्योंकि एरोप्लेन में इतना सामान तो उठाने नहीं देते हैं। तो फिर यहाँ करके हम लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस किया, क्योंकि जब यज्ञ में बेकरी पार्ट था तो हमारा भी बेकरी पार्ट था, हमारी इसी हिस्ट्री मिलती। बाबा ने नारायण की भक्ति की, हमने भी नारायण की भक्ति की, वो सत्यनारायण की कथा करके पानी पीना, नहीं तो पानी नहीं पीना है, इतना चाहे शाम को 5 पी ना बच जाए। तो जब पाकिस्तान से आए हम तो वहाँ रिफ्यूजियों को बहुत सस्ती दुकानें मिल रही थी, बहुत उस समय मदद मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो पैसा तो हमारे पास था, लेकिन दूसरे भी साथी मिल गए कि हम लोग आपको मदद करेंगे, आपके साथी बन जाएंगे, तो जो बिजनेस करेंगे तो आपका भी पैसा उसमें, हमारा भी पैसा हमारा लगा, जब मतलब आमदनी होगी तो हम आपको पैसा देते जाएंगे, ऐसा हुआ। तो वो लोग बेईमान हो गए, इतने बेईमान हो गए तो मेरे फादर को मारने को तैयार हो गए। तो मेरे को बहुत प्यार आया उस समय, मैंने हनुमान का व्रत रखा, तो झूठा केस करके मतलब उन्होंने मारने को दूसरे शहर का केस किया कि इसको हम मार डालेंगे। तो देखिए वारंट आ चुका है, हैं, और बुधवार को उनको जाना है, इधर मैंने मंगलवार का व्रत रखा। मैंने कहा हे महावीर, तेरी महावीरता तब जानूंगी जब मेरे बाप को छुड़ा के लाएगा, मैं क्या जानूं तुम्हारी महावीरता क्या है। तो देखो मंगल की शाम को वो छूट जाते हैं, बुधवार को जाना है और वहां जाते हैं मारे जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो भगवान ने मेरी सुन ली, तो और भी मेरे को अब मतलब चांस मिला कि मैं और ज्यादा भगवान को याद करूं। तो इसी तरह से मैं फिर नारायण की भक्ति करने लगी। तो नारायण की भक्ति में मतलब मेरे को जब भक्ति करती थी तो मुझे मेरा बुद्धि इधर उधर जाती थी। तो मैं कहती मैं भगवान को याद कर मेरी बुद्धि इधर उधर क्यों जाती है। मैं एक एक घंटे के बजाय दो दो तीन तीन घंटे बैठ करके अभ्यास करती थी कि मेरी बुद्धि भगवान की तरफ लगे। तो ऐसे अभ्यास करते करते तो मेरी सब मनोकामना पूर्ण होती थी, जो मैं संकल्प करती वो मेरा पूरा होता था। तो मुझे और भी मतलब भक्ति का और भी मेरे को मतलब मन लगे और भी मैं भक्ति ज्यादा करूँ, मेरे को भगवान की प्राप्ति हो। तो जैसे जैसे मैं नारायण की भक्ति करती थी ना, तो मेरे को एक कहानी आई। मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, उस किताब में एक कहानी थी कि एक फिशरमैन था, वो नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहा होता है, अगर मैं राजा होता तो मेरे नौकर होते, मेरे चाकर होते हैं, तो मैं भी राजमहल में रहता, मेरे आर्डर चलाता। ऐसे उसको राजा ही ठाट के जो है ना वो संकल्प चले लगे। तो जब उस कहानी को पढ़ करके मेरे मन में संकल्प आया कि नारायण का राज्य कहाँ होगा, वो मुझे कैसे मिलेंगे, ऐसे मेरे को नारायण की बातें जो है ना वो याद आने लगी, स्मृति में आने लगी। तो ये तो पता ही नहीं तो बाबा हमको ज्ञान देगा नर से नारायण बनाने का, नारी से लक्ष्मी बनाने का, तो ये तो हमको मालूम ही नहीं था ना कभी ऐसा। तो देखो छोटे बचपन से ही जो जो बातें आती है ना, पहले आसार दिखाई पड़ते हैं, तो वैसे वैसे हमको बाद में भी मालूम पड़ता रहता है। तो इसी तरह से हमारा नाम फूला है और मेरी बड़ी बहन का नाम देवी था। तो वो हम कहते थे हमको पहले नाश्ता चाहिए, वो कहती पहले मेरे को नाश्ता चाहिए, स्कूल में जाना हमको देरी होती है। तो वो कहती थी खबरदार तुमने देवी को कुछ बोला था। मैंने कहा बढ़िया ही देवी बढ़ती फिरती है। अरे देवियां तो शराफ देती हैं, भक्ति मार्ग में तो यही होता है ना कि देवियां शराफ देती हैं। और अरे मैं तो वो फूल हूँ जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। मैंने उसको लिखा, मैंने कहा मैं तो भगवान पर चढ़ गई हूँ, तो देवी की देवी रह गई है। तो देखो बचपन से ही हमारे अंदर वो नशा था अपने नाम का भी। तो ऐसे करते हमको ना बस इस दुनिया से ना बहुत वैराग आने लगा। मैं कहती थी इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, पैसे में भी सुख नहीं है, करोड़पति लोग हैं लेकिन उनके अंदर शांति नहीं है, उनको सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं उनको है, ये तो दिखावटी सुख है। तो बस मैं कहती थी पैसे के पीछे जान जाती है, पैसे के पीछे कैरेक्टर खराब होता है, पैसे के पीछे जो है झूठ बोलना पड़ता है, पैसे के पीछे ईमानदारी जाती है, पैसे के पीछे अभिमान आता है, पैसे में भी कोई सुख नहीं है। लेकिन सुख है कहाँ, सुख कहाँ मिलेगा मेरे को। मैं कहती थी इससे तो मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मर के भी कहाँ जाएंगे हम, अपने आप मरेंगे तो हमारी गति नहीं होगी, तो ये भी रास्ता ठीक नहीं है। फिर सोचती इससे तो अच्छा जंगल में जाकर के तपस्या करूं, तो वहाँ जंगल में भी जाऊंगी, वहाँ पर भी मेरी तपस्या पूरी हो ना हो, लेकिन वहाँ तो शेर चीते होते हैं, वो मेरे को खा जाएंगे, तो ये भी रास्ता ठीक नहीं है। फिर कहती है भगवान अब मुझे इस दुनिया से कहीं उड़ा के ले चल, कहाँ ले चल, किधर ले चल, मुझे रास्ते का नहीं मालूम, रास्ता दिखाने वाले आप हो। तो ऐसे ही मैं जैसे भगवान को बोला है तो उसके बाद मेरे को स्वप्न आता है। तो सपने में क्या देखती हूँ, तो एक संदली पर बाबा बैठा है और बहुत बड़ी सभा है, सब सफेद वस्त्रधारी है, और हालांकि मुझे पता नहीं ब्रह्मा कुमारी नाम भी मैंने नहीं सुना था, और सब सफेद वस्त्रधारी है, बहुत बड़ी सभा है और बाबा ज्ञान सुना रहा है। तो जैसे मैं बाबा के पास जाती हूँ ना, तो बाबा ने मेरे को एक लोटा दिया, तो बाबा ने कहा इसको साफ करके लाओ। तो मैं साफ करने गई, फिर मैं साफ करके लाई, बाबा ने किसको और चमका के लाई, पूरा चमका नहीं है ये। तो फिर मैं जल्दी जल्दी उसको चमकाने लगी, मैंने कहा बाबा तो ज्ञान सुना देगा और मैं तो लोटे में लगी रह जाऊंगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको चमका के बाबा के पास ले आई। मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत अच्छा चमक गया, बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छा चमक गया। और वो लोटा कौन सा था, ये बुद्धि रूपी बर्तन, इसमें मेरी भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। तो बाबा ने मेरा वो भक्ति का संस्कार भी खत्म कर दिया, भक्ति बाबा ने मेरी छुड़ाई, जो मैं इतनी पक्की थी, नियम की भी पक्की थी, भक्ति भी बहुत करती थी, लेकिन बाबा ने मेरी भक्ति का भी बर्तन साफ कर दिया। क्योंकि जब बर्तन साफ होगा ना तब तो ज्ञान ठहरेगा ना, जब ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे को जो भी मैं बात सुनती थी ना, मुझे हर बात राइट लगती थी। मैं छोटे बन से ही दो बात का ध्यान ज्यादा रखती थी, एक तो संग का ध्यान रखती थी, दूसरा कोई ऐसी वैसी किताब नहीं पढ़ती, सब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। तो संघ का भी बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि अगर संघ ऐसा मिलेगा तो मेरी बुद्धि को भी खराब कर देगा, किताब ऐसे पढ़ेगी तो भी बुद्धि बीमार पर असर होगा उसका, इसलिए मैं दोनों बातों का बहुत ध्यान रखती थी। और फिर हमारे पास में एक पड़ोसी थी तो वो हमको सत्संग में ले जाती थी, कभी कहाँ कभी कहाँ सत्संग में ले जाती थी। और एक दिन मुझे यहाँ भी ले आई बहनों के पास में, बहनों के सेंटर पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी बहन नहीं थी। बाबा का ऑपरेशन हुआ था, सब बॉम्बे गई हुई थी, और माता जी जिनके घर में सेंटर था तो वो उसकी बहू थी, उसने बोला सब बॉम्बे में गए हुए हैं, बाबा का ऑपरेशन हुआ है। तो फिर हम वापस चले आए, फिर दोबारा हम गए तो बाबा ने सब को जो है क्लास वालों को एप्पल भेजा था बॉम्बे से कि मेरी याद में सबको एप्पल भेज देना। तो मेरे को भी बाबा का भेजा हुआ एप्पल मिला, सबसे पहले फल मिला। फिर मेरे को जो बातें मैं ज्ञान की सुनती थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे शांति बहुत मिलती थी। मैं कहती थी बहने हैं तो हमारा कुछ अगर कोई बनेगा नहीं तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उस सन्यासियों के पास जाने में तो थोड़ा डर भी लगता है ना, कन्या है हम तो, इसलिए बहनों से तो हमको कुछ नहीं होगा है? तो मैं यहाँ रोज आती थी, तो जो जो बात मेरे को अच्छी लगती थी मैं दूसरों को भी जाकर सुनाती थी। तो जब मैं दूसरों को सुनाती थी तो वो मेरे को उल्टा ही सुनाते थे, अरे तुम कहाँ चली गई हो, वो तो अपने प्रेम में फंसा लेंगी, तुम अभी छोटी बच्ची हो, वो तो मिसमरिज्म कर लेती हैं, वो जादू कर लेती हैं, अभी तुम छोटी बच्ची हो, तुमको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि चल तो रहा है, पता नहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बर्बाद हो जावे। तो फिर मैंने कहा कि बाबा मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, ना इन दुनिया पर विश्वास है, ना इन ब्रह्मा कुमार पर विश्वास है, मुझे तो भगवान तेरे पर विश्वास है। अगर तो सही रास्ता है तो मुझे इस रास्ते से कभी हटाना नहीं। नहीं तो मैं कहूँ कि भगवान तूने मुझे गड्ढे में डाला, मुझे कुछ पता नहीं है रास्ते का, रास्ता दिखाने वाले आप हो। तो जैसे ही मैंने बोला ना वैसे मुझे आवाज आती है, तुझे जो कुछ मिलना है तुझे यहाँ से मिलना है, तू दुनिया में कितना भी भटक लेगी ना लेकिन तुझे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, और जो कुछ मिलेगा तुझे यहाँ मिलेगा। उस दिन से मुझे पक्का निश्चय हो गया कि मैंने एक दिन भी फिर मिस नहीं किया, रोज जाना आती थी, और मुझे इतनी लगन हो गई कि बस रात को मैं सोती थी और मुझे ऐसा अच्छा था कब सवेरा हो तो मैं चली जाऊं, और हमारा घर जो था वो पौन घंटा आने में पौन घंटा जाने में लगता था। तो वो कंपनी बाग था, क्योंकि रात को तो जंगल लगता है, तो 3 बजे उठ करके मैं सवेरे सेंटर पर आती थी, क्योंकि 1 घंटा रास्ते में लगता था, 4 बजे योग होता था, तो मुझे डर नहीं लगता था, मैं बस बाबा की याद में और बाबा की नशे में चलती थी। तो एक बार कंपनी बाग में कहीं घूमने भी निकलते है ना तो एक लड़का मिला, कहता है कि बहन जी आप सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो, मैंने कहा हम सत्संग में जाते हैं, कहते हैं आज का समय ठीक नहीं है आप अकेले नहीं जाया करो। तो मैंने उसको बड़ी फलक से जवाब दिया, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, हम भी और तुम्हारा उसको कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसे मैंने बड़ी फलक, वो अपने रास्ते चला गया हम अपने रास्ते चला गया। तो बाबा का इतना नशा रहता था, चलते चलते भी कोई कुछ भी हमारी नजर दूसरी तरफ जाती नहीं थी, बस बाबा के पास जाना है, उसे सेंटर पे जाना, लगन लगी रहती थी। हमारी माँ भी रोकती थी तुम नहीं जाया करो वहाँ, तो क्योंकि वो तो ज्ञान में चलते ही नहीं थे, हमारे मदर फादर कोई नहीं चलता था, तो हमको तो अभी लगन लग चुकी है, तो वो हमको रोकते थे क्योंकि लोग उनको भी भड़काते थे, अरे तुम्हारी लड़की शादी नहीं करेगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी और फिर वो वहाँ चली जाएगी, इसलिए उनको भड़काते थे। तो जैसे लोग भड़काते थे वैसे वो कहती तुम वहाँ नहीं जाओ, तो मेरे को बंधन डालते थे, लेकिन मेरे को तो इतनी लगन लग चुकी थी कि चाहे बंधन डाले चाहे कुछ भी डाले हमको तो पहुंचना ही है वहाँ सेंटर पर। तो जो गेट खुला रहता था ना वो बंद कर देते थे, और जो बंद रहता था वो खुल जाता, दूसरे गेट से मैं निकल जाती थी, लेकिन रास्ता बाबा मेरा निकाल देता था। तो रोज क्लास करने जाती थी, तो एक दिन कभी कभी अपने मन का भी संकल्प चलता है कि देखो आज अगर सेंटर पर नहीं जाए तो क्या, रोज रोज वही तो मुरली है, आज नहीं जाएंगे। अगर जिसने मिस कर लिया ना उस दिन ऐसा लगता था जैसे कुछ ही खो गई है, ऐसे ऐसे महसूस होता था, अनुभव होता था, और नहीं तो वहाँ जाने फिर कुछ कर दे, फिर ये भी संकल्प था ये माया ही मेरे को रोक रही है इसलिए तुमको पहले जाना है। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाती थी वहाँ, जब मैं कहती ना माया आई है और मेरे को रोक रही है तो सबसे पहले मैं पहुंच जाती थी। फिर ऐसे करते करते ना तो माँ बाप ने मेरे को बहुत बंधन डाल दिया, तो कहा तुमको शादी करनी है। तो मैंने कहा अभी जब बड़ी होंगी तब अपने पांव पे खड़ी होंगी तब मैं शादी करूंगी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तो कहते नहीं, लड़कियां बोलती थोड़ी ना, लड़कियों के माँ बाप शादी कर देते हैं। मैंने कहा वो जमाना चला गया, लड़कियां ने जीवन तो मेरे को बिताना है, आपको थोड़ी बिताना है। तो इसी तरह से मैं उनको बोलती थी, तो कहते नहीं नहीं लड़कियों की माँ बाप शादी कर। मैंने कहा ठीक है मेरी शादी कर दो, लेकिन मैं उस लड़के के साथ फेरे नहीं डलवाऊंगी, उस समय उठ जाऊंगी, आप जानो आपका काम जाने। तो डर जाते थे, तो क्योंकि ये बाबा मेरे को ट्रस्ट करता था, मुझे थोड़ी अक्कल थी, मुझे कुछ समझ में नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता शादी क्या होती। शादी माना अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जेवर पहनना, ये शादी होती है, मुझे कुछ थोड़ी पता था। तो लेकिन मेरे को बाबा जैसे टच करता था ऐसे ऐसे बोलना, और फिर मैं वो डर जाते थे, तो वो कहते थे तुम चाहे ब्रह्मा कुमारी बन जा चाहे तुम शादी कर ले, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते, हमारा ज्ञान तो ये नहीं कहता था घर बार छोड़ के चले आओ, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप हमको लिख के दीजिए, तो उसमें आपकी भी इज्जत है, नहीं तो कहेंगे इनकी लड़की इनके कंट्रोल में नहीं है, है? और हमारी भी है कि देखो लड़की माँ बाप का कहना मानती है, तो कोई कुछ कहेगा तो हम कहते हैं माँ बाप ने हमको चिट्ठी ली, आपको क्यों बोलते हो, हम चिट्ठी दिखाएंगे ना उनको, है? और ऐसे तो बहने रखती भी नहीं है हमको चिट्ठी बिना। तो फिर उन्होंने लिख के दिया, मैं रात रात बैठ के तपस्या करती थी, बाबा को याद करती थी, बाबा बाबा की मूली सुन के आती थी। बाबा कहते थे योगी और भोगी इकट्ठे नहीं रह सकते, हंस और बगले इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैं कहती बाबा जब तुमने मुझे अपना बना ही लिया है फिर मुझे इस घर में क्यों रखा है, तुम क्यों नहीं मुझे अपने पास बुलाते हो। मैं बाबा को रोज रात को बैठ करके बोलती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, दिन भर काम करना, सेंटर पर आना और रात बैठ के तपस्या करनी, मुझे थकावट भी नहीं होती थी, भूख भी नहीं लगती थी, और बस बस मुझे ऐसा लगता था मेरे को पर लग जाए मैं उड़ के बाबा के पास चली जाऊं, बस ऐसी मेरे को अंदर से उछल आती थी। तो फिर उन्होंने हमको बाद में जैसे बाबा ने उनकी बुद्धि को घुमा दिया, तो उन्होंने लिख के दे दिया मेरे को, फिर हम सेंटर पर आ गए। और जब सत्यनारायण की थोड़ा सा बीच में मेरा छूट गया, तो जब मैं भक्ति में सत्यनारायण की पूजा करती थी ना, तो उस समय ये तो पहले मालूम ज्ञान में तो नहीं थी, तो मेरे को ये था कि शादी तो करनी है, हाँ माँ बाप शादी तो करेंगे ही, हाँ तो मैं कहती थी मेरे को पति मिला तो अच्छा मिले, ऐसा वैसा पति नहीं चाहिए। तो किसी ने मेरे को बोला कि 25 पूर्णमासी रखोगी ना तो तुमको पति अच्छा मिलेगा, तो मैंने 25 से भी मेरी ऊपर हो गई, तो मुझे बाबा पतियों का पति मिल गया है ना। तो मैंने तो देखो तो बाबा मेरे, फिर बाबा ने ये भी मुझे अनुभव कराया, तो हम कानपुर में बहुत युगल थे, 16-17 युगल थे। तो बाबा ने उनको, बाबा कानपुर में आए हुए थे, जब बाबा मधुबन में आ गए उसके बाद वो गुरुवार के दिन भोग ले गई संदेशी, तो बाबा ने संदेश में उनके नाम दिए, तो सबके नाम दिए लेकिन मेरा नाम नहीं दिया। तो मैंने कहा बाबा ने मेरा नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि बाबा तो मेरे को कहता था बच्ची तुम तो घर की हो, तो मेरा तो बाबा ने नाम नहीं दिया। तो मैंने कहा बहनों का भी तो नाम नहीं आया, तो युगलों का नाम आया, तो लेकिन बहनें तो वहाँ रह करके वो देखेंगी, मैं तो अपने घर में रहती, मैं कैसे ये पार्ट देखूंगी। तो मैं बाबा को बोलती थी बाबा मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन ये पार्ट मैं जरूर देखूं, क्योंकि बाबा ने ये भी साथ में बोला था कि जो भोजन भी बनाए ना वहाँ तो वो भी योग युक्त बनाए, क्योंकि सारा दिन उनको वहाँ रहना है, रात को सिर्फ घर में सोने के लिए आना है, तो खाना भी वहीं और सेंटर पर और रहना अपने घर में है, क्योंकि इतनी सेंटर में जगह नहीं थी उस समय। और मैं बाबा को कह रही थी बाबा मेरे को ये पाठ जरूर देखना है, और बाबा ने कहा योग युक्त तो जो हो भोजन बनाए, तो दादी को कोई भोजन बनाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे को बुलाया, तो फिर मैं वहाँ भोजन बनाने के लिए गई, तो वो वंडरफुल पार्ट था, क्योंकि जो भी कोई दूसरा आके बैठता था ना, कोई दूसरा संकल्प भी लेकर बैठता था या मतलब कोई अशुद्धि से बैठता था, लेकिन बाबा चला जाता था और वो जिसके तन में आता था बाबा वो आ जाती थी, तो सब समझ जाते थे कि फिर उनको उठा देते थे, तो जैसे ही उसको उठाते थे फिर वो पार्ट शुरू हो जाता था, शहजादी आती थी, शहजादी का पार्ट, बाबा ने बहुत अच्छे वंडरफुल पार्ट दिखाए, क्योंकि इन सब युगलों को सरेंडर कराना था बाबा ने, इसलिए बाबा ने ये सब किया। तो हम तो बाबा के थे ही, बाबा ने तो पहले से बोल दिया बच्ची तुम घर की हो। तो जब 5 दिन पूरे हुए ना, 5 दिन का प्रोग्राम था ये, 5 दिन जब पूरे हुए तो जिस टाइम में बाबा आते थे तो वो रोने लगी कि जैसे बाबा के साथ हम 5 दिन थे, अभी जैसे बाबा से बिछड़ रहे हैं। तो उसको रोना आ रहा था, तो वो रो रही थी। तो मुझे ऐसा अनुभव लग रहा था, हो रहा था कि जैसे बाबा मेरे साथ साथ है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, सो रही हूँ, बाबा मेरे साथ ही साथ है। एक पल, एक सेकंड बाबा से मैं अलग नहीं हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती थी जैसे मेरे जमीन में पाँव नहीं है, मैं जमीन से ऊपर ऊपर चल रही हूँ। और मेरे को भूख भी नहीं लगती थी, बस मैं नशे में रहती थी बाबा की याद में, बाबा के पल पल बाबा के साथ ही साथ हूँ मैं। तो ऐसे बाबा ने मेरे को अनुभव किया। तो ये भी मुझे भक्ति का फल दिया, जो मैंने 25 पूर्णमासी रखी ना, मेरे को पतियों को पति मिले। तो कैसे जब शादी होती है नए नए साथ ही साथ रहते है ना, इसलिए मैं भी बाबा के साथ ही साथ ही देखो मेरे को पतियों को पति मिल गया। तो बाबा सब प्रकार का मुझे अनुभव कराया, अति इंद्रिय सुख क्या है, माँ बाप बाबा का माँ बाप का सुख क्या है, बाबा ने सब अनुभव कराया मेरे को। सखा कैसे हो गए, तो सब प्रकार का मेरे को बाबा ने सब संबंधों का सुख दिया। तो ऐसे मेरे को बहुत खुशी होती है। और मैं शुरू से लेकर के एक बाल एक भरोसे पर रही, भले कैसी भी परीक्षा आई हमारे सामने, बहुत परीक्षा आई, लेकिन एक बल एक भरोसा, दूसरा न कोई। परीक्षा तो आएगी, बिना परीक्षा के तो आगे बढ़ नहीं सकते आप, हर एक के सामने आती है कोई ना कोई परीक्षा। तो मैं कहती बाबा मामा भी ऐसे थोड़ी बन गए, बाबा मामा के सामने भी कितनी परीक्षा आई, तो हमारे सामने भी तो आएगी ना। तो ऐसे करते करते फिर हमारे जो है ना वो हम आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद हम जो भी संकल्प करते थे हमारा बाबा पूरा करता था। तो एक बार संदेशी के घर में कोई, मतलब संदेशी घर से आती थी भोग लगाने के लिए गुरुवार का, तो वो कहती है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आज हम नहीं आ सकेंगे, आप भोग किसी से लगवा लेना। तो उस बहन ने मेरे को बोला कि आज तुमको भोग लगाना, वो बहन नहीं आएगी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे बाबा को भोग लगाना है। तो मैं नहा रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, जैसे मेरे मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, ऐसा मुझे मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, बाबा से बात कर रही हूँ। तो जब भोग का समय हुआ तो मैं संदली पे आके बैठी। तो जैसे ही मैं संदली पे बैठी, इतने में वो आ गई, कहती हमारे मेहमान चले गए, हमने कहा अभी टाइम है इसलिए मैं चली आई। तो फिर मैं संदली से उतर आई, फिर वो संदली पे बैठ करके बाबा को भोग लगाया उसने। वो तो संदेशी थी, मैं तो संदेशी नहीं थी। तो फिर जब भोग लगाया, तो जब संदेश सुनाया ना, तो वही संदेश सुनाया जो मैंने बाबा से बात किया, उसने संदेश के रूप में सुनाया और मैंने बाबा से बात किया। वो मुझे ऐसा, तो देखो बाबा कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष, एक तो ध्यान में जाकर के ट्रांस में जाकर के भोग लगाते हैं, एक बुद्धि द्वारा भी हम बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा से बातें करते हैं ना बुद्धि द्वारा, तो वो अपरोक्ष है। तो ऐसे ही बाबा ने मुझे ये भी अनुभव कराया। तो फिर बाबा ने, फिर जब मैं एक बार यहाँ मधुबन में थी, तो कुछ बाबा के लिए मुझे बनाना था, मेरे को अंगीठी नहीं मिल रही थी कि भोग चला आया, संदेशी भी आ गई, क्योंकि पहले रोज का भोग खाने का भी जो है ना, वो भी संदेशी लगाती थी, ऐसे ऐसे नहीं योग में भोग नहीं लगाते थे, लेकिन संदेशी भोग लगाती थी यहाँ इसी हाल में, इसी छोटे हाल में। तो संदेशी भी चली आई और मेरे को अंगीठी नहीं मिली। फिर मेरे को अंगीठी मिली, मैंने बनाया, मैंने कहा बाबा का भोग तो चला गया और संदेशी भी चली गई, मेरा तो बाबा स्वीकार ही नहीं करेगा। तो फिर मैंने अंगीठी मिली तो मैंने बनाया, मैंने कहा देखेंगे अभी, जब मतलब बन गया तो फिर मैंने कहा अगर संदेशी वतन में होगी तो मैं डिब्बी रख दूंगी और नहीं तो वापस लेके आऊंगी। तो जब मैं यहाँ आई तो देखा तो अभी संदेशी वतन में है, तो फिर मैंने डिब्बी थाली में रख दिया जो बना के लाई थी। तो फिर जब संदेशी नीचे उतरी तो उसने सुनाया कि देखो बाबा ने मेरे को वतन में बैठा दिया, बाबा ने कहा मेरी बच्ची कुछ बना के ले आ रही, जब वो लेके आएगी ना तो मैं भोग स्वीकार करूंगा। तो देखो बाबा कैसा प्यार का भूखा, हम भी प्यार के भूखे हैं। तो बाबा ने ऐसे बोला, मैंने कहा ना बाबा मेरा स्वीकार नहीं कर, बाबा ने कहा मैं स्वीकार कर, जो प्यार से बाबा को खिलाता है ना बाबा उसका रिटर्न देता है। तो ऐसे ही जब शुरू शुरू में मैं ज्ञान में आई तो मेरे पास कोई मतलब जो थोड़े पैसे अपनी मेहनत की कमाई के थे तो मैंने कहा आज मैं बाबा को भोग लगाऊंगी। तो गुरुवार के दिन मैंने कहा आज मैं हम भोग लगाएंगे। तो फिर हमने हमको ये आया कि मैं किसको भोग लगा रही हूँ, बाबा को, भगवान को भोग लगा रही हूँ बाबा को। हा? तो मैं खुद ही खरीद के लाई, खुद ही मैंने बनाया बड़े प्यार से बड़ी सफाई से। अरे मेरे तो बाबा को मेरे तो कितना बड़ा भाग्य है जो मैं भगवान को बना के खिलाऊं है। तो ऐसे मेरे को बहुत अंदर में खुशी भी थी और लगन भी थी और मैंने उसी बाबा की याद में मैंने भोग बनाया। तो जब भोग बनाया तो संदेशी आई तो टाइम हो गया था, वो भी अब ठंडली पे बैठी, उसको कुछ पता नहीं है किसका भोग है क्या है। तो जब वो बैठ गई तो फिर उसने जब संदेश सुनाया बाबा का, तो बाबा का संदेश सुनाया कि बाबा ने कहा कि बच्ची मैं कलप का भूखा हूँ, भले मुझे भक्ति में खिलाते हैं लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन उनकी भावना पूरी करता हूँ, लेकिन मैं कलप ऐसा पवित्र भोजन, ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन मुझे आज मिल रहा है। जैसे बाबा ने, जैसे मैंने इतनी शुद्धि से बनाया ना अपने अंदर प्यार से, तो बाबा ने रेशमान भी बाबा ने ऐसा दिया मेरे को तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई। तो जब भी मैं कुछ भोग बनाती थी तो मैं बहुत प्यार से और बहुत लगन से बहुत बाबा की याद में बनाती थी। ऐसे ही बाबा जब एक बार दिल्ली में आए थे मेजर की कोठी में, तो वहाँ पर जो है एक मेजर था उसका ट्रांसफर होने वाला था। तो फिर उसका ट्रांसफर रुक गया, तो रुक गया तो उसने अपने बीवी बच्चों को तो अपने पियर में छोड़ दिया था अपने घर में। तो फिर उसका ट्रांसफर रुक गया तो फिर उसने कहा मेरा बंगला तो खाली है, तो फिर मैं बाबा को क्यों नहीं बुलाऊं, वो थोड़े समय से ज्ञान में चलता था तो बाबा को क्यों न बुलाऊं। फिर वो बाबा को बुलाया अपने बंगले में, बाबा वहां आया था। फिर वहां से बाबा कानपुर में आया था, तो कानपुर में बाबा आया तो मेरे को आया कि मैं बाबा के साथ जाऊं अंदर दिल्ली में, मैंने दिल्ली देखी नहीं। तो एक बार क्या हुआ, तो हम कन्याओं की पिकनिक रखी थी कानपुर में, कन्याओं की पिकनिक रखी थी। तो जो दादी थी ना वो दूसरे दूसरे को मिलाती गई, तो बाबा का जब क्लास का समय हुआ तो हम लोगों को प्लेट पकड़ा दी है। अभी प्लेट खाने थोड़ी आए हम है, हम बाबा से मिलन मनाया ही नहीं और प्लेट खाने आए क्या हम, तो हम पिकनिक ऐसे हमको तो फीकी फीकी लगी। फिर अभी क्लास के समय तो हम बाबा को रोक भी नहीं सकते, क्लास के समय तो बाबा को जाना ही है। फिर हम सब कन्याओं ने मीटिंग किया, आखिर बाबा से मिलन कैसे मनाया अभी। तो सबने मीटिंग में पास किया कि देखो बाबा क्लास करके आएगा ना तो अपने कमरे में जाएगा। पहले सिटिंग रूम था, फिर बाबा का आगे कमरा था, दो कमरे थे। तो हम लोग सब अंदर चले जाते, जब बाबा आएगा तो बाबा से मिलन मना लेंगे। तो रात अपनी है, बाबा अपना है, अभी तो सब चले गए हैं। फिर हम लोग सब कन्या अंदर थी और एक कन्या बाहर गेट पर खड़ी हो गई। तो फिर उसके बाद ना बाबा आए अंदर और लच्छू आई अंदर और हम लोग दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर बाबा जाने हम जाने, फिर सब सिटिंग रूम में बैठते थे और एक एक बाबा के पास जाते थे। तो बाबा पूछता था बच्ची कोई आशा है, कोई दिल है। हमने कहा बाबा हमने दिल्ली नहीं देखी तो क्योंकि हमको कोई ले नहीं जाता, तो दिल्ली में बाबा आता तो हमको ले नहीं जाता। अभी तो मैंने कहा बाबा आया तो बाबा हमको ले जाएगा, दिल्ली जाएगा वापस। तो फिर मैंने कहा बाबा मैंने दिल्ली नहीं देखी। पापा ने कहा अच्छा बच्ची तुम्हारी भी आश पूरी करूंगा, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर कहा अपना दादी से पूछो, क्योंकि दादा बाबा जो है ना वो हमको नियम भी सिखाता है ना सब, तो दादी से पूछो। दादी, मैंने कहा दादी तो बाबा छुट्टी नहीं देंगी क्योंकि वो कहेंगी यहाँ काम कौन करेगा है, तो कैसे जाएंगे। फिर वो तो सचमुच में मेरे को छुट्टी नहीं दी, मैंने मांगी तो मेरे को छुट्टी नहीं दे हमको। तो फिर मैं बाबा के पास, मैंने कहा बाबा तो मेरे को तो छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं कैसे चलूंगी। तो फिर बाबा ने कहा फिर तुम पूछो मेरे को बाबा बार बार भेजता था। फिर मैं ना मैंने कहा मैं दादी से बोला, मैंने कहा दादी मैं बाबा के साथ में जाऊँ, क्यों नहीं बाबा के साथ बाद में जाना, बाबा के साथ तो सब बहुत भीड़ होगी ना, तुमको कोई मजा नहीं आएगा। मैंने कहा बाबा के साथ ही तो मजा है, बाकी मजा क्या है, है? तो मेरे को जाना है, है? ऐसे मैंने बाबा दादी को बोला। तो फिर मैंने कहा मैं तैयारी करके आऊँ, क्योंकि आज ही बाबा को जाना है, है? तो मेरे को तैयारी तो करनी पड़ेगी, मेरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि बाबा आए तो सब काम में बिजी हो जाते हैं। तो जैसे मैं तैयारी करने गई तो मेजर साहब आ गए, कह रहे मेजर जिनके घर में जिनके कोठी में बाबा थे ना, तो वो भी यहाँ आए हुए थे, तो उनको सारा घर दिखाना, तुम सब सेंटर दिखाना सारा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आगे मैंने अपनी कुछ तैयारी नहीं किया, तो फिर भी मेरे को दादी बोलती है अभी तुम नहीं जाओ। मैंने कहा दादी मेरा रिक्शा आ गया है, मैं बैठ गई हूँ रिक्शा में, अभी मैं आ रही हूँ, बस मुझे तो लगन लगी मेरे को बाबा के साथ ही जाना है, कुछ भी हो जाए बाबा के साथ ही जाना। मैंने कहा दादी रिक्शा आ गई, मैं तो अभी बैठ गई हूँ, तो फिर मैं आ गई बाबा के, तो फिर बाबा के साथ ही मैं दिल्ली में आई। तो दिल्ली में बाबा ने बोल दिया सभा के बीच में बच्ची दिल्ली देखने आई है। तो फिर ये मनमोनी दीदी जो थी ना, ये दिल्ली की कंट्रोलर थी उस समय, रजौरी गार्डन में रहती थी। फिर वहाँ ना, फिर मेरे को दीदी ने कहा तुम बाबा का खाना बनाना यहाँ, मेरे को बहुत प्यार से मैं बाबा का खाना बनाती थी। तो जब बाबा खाना खाते, बाबा ने कहा बच्ची तुम वहाँ क्यों नहीं बनाती थी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने कहा बाबा वहाँ तो बनाने वाले थे ना, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर बाबा ने मेरे को रोज बाबा गिट्टी खिलाता था, रोज बाबा गिट्टी खिलाता था। और वो मेजर का भी जो कमरा था ना, वो किचन से क्रॉस होकर के वो अपने कमरे में जाता था, तो वो रोज मेरे से पूछता था आपने खाना खाया, आपने दूध पिया, मैंने कहा खा लिया। तो वो बहुत ही निर्माण था, बहुत ही निर्माण था। तो एक बार ना उसका इसलिए सुनाती है, उसने बाबा की गोदी में शरीर छोड़ा, वो सुना रही आपको। तो एक बार ना उसके मिलिट्री का मेजर था ना, तो बाबा कहते थे कि अभी मेरी क्या सेवा, यहाँ कोई नहीं है। उसने कहा नहीं बाबा बहुत सेवा है, बहुत सेवा कराई उसने बाबा से। 600 लोगों को बाबा के पास ले आता था रोज, तो बाबा उनको ज्ञान देता था, हम लोग भी सब बैठ जाते थे। बाबा कहते थे बच्चे देखो आपकी ड्यूटी है ना दुश्मन पर गोली चलाना, लेकिन गोली चलाते समय शिव बाबा को याद करना। तो शिव बाबा को याद करेंगे ना तो आपका कोई भी विकर्म नहीं बनेगा, आपका कोई पाप का खाता नहीं बनेगा, इसलिए शिव बाबा को याद करके गोली चलाना। हम लोग सब सुनते थे कैसे कैसे। फिर एक बार ना उसका मिलिट्री में फोन आया, क्योंकि शिव जयंती भी थी, तो शिव जयंती की भी तैयारियां हो रही थी कि हम लोग रात को 12 बजे सोते थे, तो क्योंकि कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ती और सब सेंटरों का मतलब ब्रह्मा भोजन था, एक एक सेंटर का एक एक दिन का ब्रह्मा भोजन था, और बाबा के साथ में और सब सब्जियां भी आ गई। और उसका फोन आता है मिलिट्री से, तो कोई कुछ हुआ होगा, तो वो सुन करके फिर वो अपने कमरे में गया। तो कमरे में गया तो उसको खांसी आने लगी, तो खांसी आने लगी, एक दादी हमारे उनके पास में थी, तो खांसी कहते बाबा को बुलाओ, अभी बाबा लेटा ही है, क्योंकि अभी पहली नींद होगी बाबा को, 12 बजे तो लेटा है बाबा, 12:30 बजे की बात है, बाबा को बुलाओ। तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा को कैसे जगाऊं, लेकिन फिर बार बार वो कहता था बाबा को जगाओ, बाबा को जगाओ, बाबा को जगाओ। और फिर बाबा को जगाया, तो बाबा को जगाया तो बाबा आए उसके कमरे में, तो बाबा ने उसका सिर जो है वो अपनी गोदी में रखा और उसने कहा बाबा मेरे गुनाह बख्शो मैं जा रहा हूँ, बाबा मेरे गुनाह बख्शो मैं जा रहा हूँ, ऐसे 3 बार बोला और बाबा की गोदी में ओम शांति। फिर तो सब जगह खबर दिया मिलिट्री वालों को, उनके घर में यहाँ सब सबको खबर मिल गई। तो फिर मिलिट्री वाले सवेरे आए, रात को उसने शरीर छोड़ा ना 1 बजे, तो मिलिट्री वाले आए, तो मिलिट्री वाले उनको लेके गए अपने मिलिट्री में, तो मिलिट्री वालों ने उनका संस्कार किया, अपने लोग भी बहुत गए थे वहाँ, मिलिट्री वाले भी थे, खूब उसको बैंड बाजों से लेके गए, खूब उसको पूरी ड्रेस पहनाई पहले तो खूब बैंड बाजों से उनको लेके गए। और फिर उसके बाद ना उसका मतलब जो सब्जी आई थी तो वो तो उसके आने पर कितने बहुत लोग आए तो उसी में खत्म हो गई। तो ऐसे करते करते फिर बाबा मधुबन में चला आया। और फिर दीदी ने हमको सारी दिल्ली दिखाई। दीदी ने हम लोगों को दिल्ली घूमने का प्रोग्राम बनाया। उस समय संडे को 1 रुपए की टिकट मिलती थी, सवेरे 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप घूम सकते हैं उसी एक टिकट पे, 1 रुपए की टिकट में। तो हम 1 रुपए, तो ओम प्रकाश भाई है ना जो रेलवे में, वो दिल्ली में दीदी के साथ रहता था, और नल्ली बहन बॉम्बे वाली और उसकी सिस्टर बड़ी वाली, हम चारों जने हम का प्रोग्राम था दिल्ली घूमने का। फिर कहीं सेंटर पर नाश्ता भी दीदी ने रखवाया था, खाना भी सब सेंटर भी देखते गए साथ साथ और दिल्ली भी घूमते गए। तो ऐसे करके दीदी ने हमको दिल्ली घुमाई। और बाबा तो मतलब सब प्रकार का हम बच्चों को अनुभव कराते ही हैं। और जो है ना, जब मैं यहाँ मधुबन में थी ना, तो बाबा ने यहाँ छोटे हाल में, बाबा पहले दिन में आते थे, अव्यक्त बाबा पहले दिन में आते थे ऐसी छोटे हाल में बाबा के कमरे में, और बाबा के यहाँ कई बार संदली वो गद्दी पर बैठते थे बाबा, जैसे होमली थी इससे हम बाबा से साथ बैठते थे। तो एक बार मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी को बाबा से अलग बात करनी है, अकेले में पहले अकेले अकेले बात करते थे बाबा से, अकेले बात करनी है। तो दीदी ने कहा तुम्हारे को क्या बात है, तुम क्या बात करेगी, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है, क्या बात करेगी। मैंने कहा नहीं दीदी मेरे को बात करनी है। फिर दीदी तो मेरे को बोल करके चली गई। फिर मैं हम ऊपर ही रहते थे ना, तो हम ऊपर से नीचे उतरे तो देखा कि एक बहन बाबा से बात कर रही है। तो मैंने कहा अभी चांस बहुत अच्छा है, तो मैं पीछे बैठ गई। तो उस बाबा तो बहुत 2 मिनट में बात पूरी कर देता है, तो उसकी बात पूरी हुई, मैंने भी बाबा से बात करी। तो मैंने कहा देखो दिल जाने दिला राम जाने, जो मेरी दिल की बात है बाबा जानता है, दूसरे तो कोई नहीं जानते ना। तो मैंने भी बाबा से बात कर ली, फिर भी कोई आया नहीं ना। तो देखो ऐसे बाबा हम बच्चों की कैसे सूक्ष्म जो है, हमारी जो बात पहुंचती है वो कैसे पूर्ण करता है। जो दिल से बात करते हैं ना हम सच्ची दिल से, तो बाबा सब सुनता है, बाबा उसके सामने हाजिर हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी हमारा मिक्स है ना, तो बाबा भी फिर छोड़ देता है। अगर हम सब बात बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो बाबा खुद ही हमारा ध्यान रखता है, फिर बाबा खुद ही हमारे सामने आ जाता है। तो ये है हमारी सच्ची दिल की लगन की बात। तो जितनी जितनी हमारी लगन बढ़ती जाएगी बाबा के साथ में, और उतना ही बाबा हमारी सब बातें पूरी कर देता है। ठीक है, चलो ओम शांति। 10 बजे अभी है अपने अंदर की लगन बढ़ाने। बाबा अभी भी बाबा ने बोला ना इसी मुरली में कि एक मेरे लवलीन बच्चे हैं, एक है लवली बच्चे। तो जो लवलीन बच्चे हैं ना, वो अंदर से जिगर से हैं, बाबा के सिवाय उनको सामने कुछ नहीं आएगा, उनके सामने कुछ आएगा ही नहीं, और बातें नहीं आएगी इसमें, वो अवॉइड कर देगा, लेकिन बाबा को सामने आएगा। हमको सपने भी बड़े अच्छे से आते थे। सबसे पहले मुझे सपना आया कि सपनों में मेरे को सबसे पहले मुझे सपना आया कि एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं बाबा का परिचय दे रही हूँ, खूब दे रही हूँ। वो मैं तो कभी बोल भी नहीं सकती थी, जैसे मैं बोलती जा रही बाबा का परिचय देती जा रही, बाबा की महिमा करती जा रही। तो जब मैंने पूरा किया तो सब मेरे पाँव पड़ने लगे। तो मैं कहती मेरे पाँव नहीं पड़ो, मेरे को देने वाला कौन है उसको याद करो, मेरे पाँव नहीं पड़ो, मेरे को देने वाला कौन है उसको याद करो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। फिर दूसरा मेरे को सपना आया कि एक पतली सी तार है, उस तार के ऊपर मैं चल रही हूँ और देखती हूँ बीच में, जब जैसे मैं आती हूँ ना, तो देखती हूँ बहुत गहरा खड्डा है, और इधर भी देखती हूँ बहुत गहरा खड्डा है। तो बाबा सामने खड़ा हुआ है, बाबा कहते बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख मंजिल तक पहुँच जाएगी, बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख मंजिल तक पहुँच जाएगी, ऐसे मेरे को बाबा कह रहा है। जब दिल्ली में पहला मेला हुआ था सन 73 में, उस समय की बात है। तो उस समय मैं वहाँ टोली की ड्यूटी पर थी, तो बाबा ने मुझे ये सपना दिखाया। वो पतली सी तार कौन सी है, ये बुद्धि रूपी तार, अगर जरा सा भी इधर उधर हमारी घूम जाती है ना, तो हम गड्ढे में जाएंगे, है ना। नहीं तो बाबा को सामने देखे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसे बाबा मेरे को कह रहा है। फिर इतने में मधुबन पहुंच जाती हूँ, दिल्ली में थी उस समय, मधुबन पहुंच जाती हूँ। तो सब कहते हैं देखा तुम वहां गई ना, तुम्हारी चटनी हो गई, तुम्हारा क्या हाल हो गया, ये तुम बीमार होके आई हो। मैंने कहा नहीं बाबा को देखो, है जिसको मैं बोलती जा रही हूँ ना, बाबा को देखो, वो फिस्ता बनता जा रहा है, और दीदी भी मेरे पास आई। दीदी कहती तुमको कुछ चाहिए? मैंने कहा दीदी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को देखो, समय बहुत थोड़ा है, समय जा रहा है, अभी बाबा को देखो। तो दीदी भी फरिश्ता हो गई, सब फरिश्ते बन गए, बड़े अच्छे सीन लग रहा था उस समय। तो देखो, तो ऐसे ऐसे बाबा मेरे को सपने भी दिखाता था, और भी कई सपने मेरे को बाबा ने दिखाए, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक बार मुझे सपना दिखाया, वो एक लास्ट में सुनाती हूँ अभी। तो सपना था, ये सामने ऊंची पहाड़ी है, गेट के सामने ऊंची पहाड़ी है। तो बस मेरे को अंदर से आया कि अभी घर चलना चाहिए, अभी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, घर चले। लेकिन घर जाएंगे कैसे? जब तक हिसाब किताब है तब तक जा नहीं सकते हैं, और हिसाब किताब चुकता करने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपस्या करने के लिए हमको एकांत स्थान चाहिए, अभी एकांत में हमको यहाँ कोई बैठने नहीं देगा। तो मैं सामने ऊंची पहाड़ी, उस पहाड़ी पे जाकर के बैठ जाती हूँ। मुझे ना किसी व्यक्ति की, ना वैभव की, ना किसी वस्तु की, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। ऐसी मैं तपस्या कर रही हूँ वहाँ ऊपर पहाड़ी पर। जैसे मैं तपस्या कर रही हूँ, इतने में एक शेर आता है, और वो शेर नीचे की पहाड़ी पे बैठ जाता है, और वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा उसे, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसे। तो इतने में ना एक भाई देखता है कि वहाँ एक सफेद वस्त्र वाली कोई बैठी है। तो वो भाई मेरे को उस तरफ आ रहा था। उस समय मेरे को पहले कोई संकल्प नहीं था, उस समय मेरे को संकल्प चला कि इसके मन में कुछ परचिंतन सा चल रहा है। तो वो शेर नीचे उतरा, उसको खा जाता है, और फिर भी उसी जगह पर आगे बैठ जाता है, और फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। और फिर उसके बाद मैं सवारी, उसके ऊपर सवारी करके मधुबन में आती हूँ, और आकर सबको अपना अनुभव सुनाती हूँ। तो देखो, बाबा कहते हैं ना, माया भी कागज का शेर है, उसे डरना नहीं है। अगर बाबा ने मुझे ये बताया कि बाबा की याद में भय खत्म हो जाता है, एक तो भय नहीं लगता किसी बात से भी, और आपकी तो शेर पर सवारी है ही है, वैसे भी देवियों की सवारी दिखाते हैं ना। तो कोई भी जो अगर बाबा की याद है ना, तो आपकी हर बात में सेफ्टी है, आपकी उस पर विजय है, विजय प्राप्त है आप, तो इसलिए आपकी शेर पर सवारी है। तो बाबा ने वो भी मुझे अनुभव कराया। तो इसलिए बाबा की याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, जितना हम कमाई कर ले, जितना बाबा को याद कर ले, जितना जो कुछ कर ले, वो अभी कर लेंगे तो वो अब हमेशा के लिए कलप कलप जो हमारी नूंद होती जाएगी उसमें, है ना, नहीं तो फिर रह जाएंगे, है ना। इसलिए जितना कमाई करे उतनी थोड़ी है। तो अभी तो रात दिन यही हमको चिंतन चलना चाहिए कि बस बस बाबा के सिवाय, अभी अंत में बाबा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, है भी कोई नहीं। ऐसे बाबा ने कई प्रकार के हमको बीमारी का भी अनुभव कराया, जैसे बीमारी में भी बाबा हमको मदद करता है, वो तो जादू का काम करता है, हा? तो वो भी बाबा ने बहुत अच्छे अनुभव कराए हैं, ठीक है।